रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन COP29 में सहभागी होकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल बाकू से स्वदेश के लिए प्रस्थान। नारायणगढ़ बुड़बल सड़क खंड का निर्माण काम आगामी मार्गशीर्ष के भीतर अगर शुरू नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताई प्रतिबद्धता। नागढ़ुंगा सड़क आज से मार्गशीर्ष 5 गते तक दोपहर 3 घंटे आंशिक रूप से की जाएगी बंद। और पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई, 12 आतंकी को मार गिराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल अजरबैजान के बाकू शहर में इसी कार्तिक 26 गते से शुरू हुए जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासंधि पक्षों के सम्मेलन COP29 में सहभागी होकर आज बाकू से नेपाल के लिए प्रस्थान किया। वो बाकू से कतर के दोहा होते हुए स्वदेश वापस लौटेंगे। राष्ट्रपति पौड़ेल को बाकू स्थित हैदर अलीयेव अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वास्थ्य मंत्री तैमूर मुशायब ने विदाई की। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के निमंत्रणा पर कोप सम्मेलन में सहभागी होने के लिए राष्ट्रपति पौड़ेल सोमवार बाकू पहुंचे थे। राष्ट्रपति पौड़ेल ने COP29 अंतर्गत मंगलवार उच्च स्तरीय सत्र के विश्व के नेताओं के जलवायु कार्य शिखर सम्मेलन को संबोधित किया था। इस अवसर पर उन्होंने हिमालयी सुरक्षा को ही पृथ्वी की सुरक्षा बताते हुए इस विषय पर ध्यान देने का विश्व समुदाय को आह्वान किया। सम्मेलन अंतर्गत नेपाल द्वारा आयोजित पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु जन्य हानि तथा नुकसानी संबोधन शीर्षक की उच्च स्तरीय राउंड टेबल बैठक को राष्ट्रपति पौड़ेल ने संबोधन किया। कल ही किर्गिस्तान द्वारा जलवायु संबंध में बाकू में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पीड़ित होने वालों को न्याय देने के लिए जलवायु संबंधी समस्या और गरीबी निवारण कार्यक्रम को एकीकृत रूप में संबोधन करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि पूर्व पश्चिम राजमार्ग के तहत नारायणगढ़ मुगलिंग सड़क खंड के निर्माण में देरी को जल्द ही हल किया जाएगा। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज संबंधित मंत्रियों, मंत्रालय के अधिकारियों, रूपनदेही नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व के सांसदों, जनप्रतिनिधियों लगायत से उक्त सड़क खंड पर निर्माण कार्य पर विचार विमर्श में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि आने वाले मार्गशीर्ष तक काम शुरू नहीं होने पर कॉन्ट्रैक्ट बाध्यता से समाप्त करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने स्पष्ट कर दिया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, गणतंत्र और संघीयता के मूल में नीचे से ऊपर की ओर कोई व्यवस्था नहीं है। कांतिपुर 2024 के समापन सत्र को संगोष्ठी में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कार्यान्वयन के 10 साल बाद संविधान की समीक्षा और मूल्यांकन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि देश में स्थिरता, सुशासन और विकास के लिए मौजूदा शक्ति समीकरण इसे सार्थक बनाएगा। आने वाले 1 साल 8 महीने के बाद कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउबा को सत्ता हस्तांतरण करने की बात उन्होंने बताई। एक दूसरे सवाल पर प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि संसदीय समिति के प्रतिवेदन के आधार पर गिरफ्तार किए गए लोगों के विषय में अदालत फैसला करेगी। नागढ़ुंगा मार्ग आज से आगामी मार्गशीर्ष 5 गते तक दिन में आंशिक रूप से बंद रहेगा। नागढ़ुंगा सुरंग निर्माण परियोजना के जानकारी दी है कि नागढ़ुंगा सुरंग के पश्चिमी पोर्टल त्रिभुवन राजमार्ग के अंतर्गत धादिंग की सिसने नदी में स्लोप कटिंग के कारण सड़क बंद की जाएगी। परियोजना ने एक नोटिस प्रकाशित कर कहा है कि आज से आगामी मार्गशीर्ष 5 गते तक सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आंशिक रूप से बंद रहेगी। वहीं इस अवधि के 20 मिनट में दोनों तरफ सड़क बंद रहेगी। परियोजना ने सड़क बंद के समय में वैकल्पिक सड़क प्रयोग करने का भी सूचना मार्फत आग्रह किया है। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा है कि अगले 3 वर्षों के भीतर आईटी उद्योग के माध्यम से 3 लाख युवाओं के लिए रोजगार सृजित किया जा सकता है। आज लिविंग विद आईसीटी द्वारा आयोजित स्टार्टअप एंड आइडिया फेस्ट 2024 का उद्घाटन करते हुए मंत्री गुरुंग ने आईटी उद्योग के विकास में सरकार और निजी क्षेत्र से सम्मान समर्थन की अपेक्षा की। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान काठमांडू में आईटी पार्क और नॉलेज पार्क बनाने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि देश को डिजिटल बनाने का लक्ष्य स्थानीय निकायों को सरकारी कामकाज को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाकर शुरू किया जाएगा। शुक्रवार तक चलने वाले स्टार्टअप और आइडिया फेस्ट में विभिन्न आईटी संबंधी नवीन कार्य प्रदर्शित किए जाएंगे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराई ने संबंधित अधिकारियों से कक्षा 10 और 12 के शैक्षणिक परिणामों में सुधार करने का अनुरोध किया है। आज शिक्षा परिषद के सचिवालय शिक्षा तथा मानव संसाधन विकास केंद्र सानोठीमी में परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने सभी संबंधितों को शैक्षिक उपलब्धि में सुधार करने का निर्देश किया। बैठक के बाद उन्होंने सानोठीमी के केंद्र के प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री, विकास और पुस्तकालय से संबंधित शाखाओं सहित विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं का आपातकालीन निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री भट्टराई ने चिकित्सा शिक्षा आयोग, मानव मान्यता तथा समकक्षता, छात्रवृत्ति एवं वैदेशिक संबंध से संचालित विद्यालय संबंधी कार्य शाखा का निरीक्षण किया तथा कार्य प्रवाह समस्याओं को एवं चुनौतियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे, त पनि एनटीसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटीसीको डे प्याक लिन *14*15 ह्यास डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। अस्पताल पर आधारित एक द्वार संकट व्यवस्थापन केंद्र ओसीएमसी का प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आज से शुरू हुआ है। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि सम्मेलन से ओसीएमसी के व्यवस्थापन संबंधी प्रभावकारी नीति बनाने में सहयोग मिलेगी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के आयोजन में शुरू हुए सम्मेलन शुक्रवार तक संचालन होगी। कार्यक्रम के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए मंत्रालय के प्रशासन महाशाखा प्रमुख ऋषिराज आचार्य ने कहा कि ओसीएमसी से हिंसा संबंधी घटना का रोकथाम और नियंत्रण पर उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह किया है। स्थापना के 13 सालों के बाद एक दशक के समीक्षा के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन से उत्कृष्ट ओसीएमसी का मॉडल सार्वजनिकीकरण के साथ ही इसका विद्यमान अवस्था और भावी योजना के बारे में विचार विमर्श होगी। मौके पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कमला पराजुली ने कहा कि देश भर के विभिन्न ओसीएमसी सेंटर के अनुगमन के दौरान अधिक अस्पताल में इसका सेवा प्रभावकारी देखा गया है, परंतु और बहुत सुविधा संपन्न भौतिक पूर्वाधार होने पर भी सेवा सुधार करने की आवश्यकता है। उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि राजनीति सेवा का उत्कृष्ट स्थल है। आज नेपाल प्रजातंत्र सेनानी संघ ललितपुर के तीसरे जिला सम्मेलन में उप प्रधानमंत्री सिंह ने कहा कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र व्यवस्था और संविधान जारी करने में नेपाली कांग्रेस का योगदान अग्रस्थान में है। काठमांडू जिला अदालत ने 21 वर्ष से मारवाड़ी सेवा समिति के कब्जा में रहे पशुपति क्षेत्र विकास कोष के स्वामित्व के पशुपति गौशाला धर्मशाला के जमीन में मुहियानी हक नहीं लगने का फैसला किया है। न्यायाधीश कमल प्रसाद पोखरेल के इजलास से बीते आश्विन 16 गते को किए फैसले का पूर्ण पाठ में पशुपति गौशाला धर्मशाला के साविक पशुपति वार्ड नंबर 2 के किता नंबर 83 के 4 रोपनी 15 अना 2 दाम और किता नंबर 85 के 4 रोपनी 10 अना जमीन पर समिति का मोही हक नहीं लगने का ठहर किया है। समिति ने धर्मशाला के जमीन पर अपना मोही हक दावी किया था, फिर भी उस जमीन पर मोही होने का तथ्य अस्वीकार किया गया है, ये जानकारी फैसला में उल्लिखित है। नेपाली कंग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवा ने कंग्रेस नेत्री एवं गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य विमला गौचन की निधन पर दुख व्यक्त किया है। सभापति देउवा ने संतप्त परिवारजनों के प्रति पार्टी और अपनी ओर से गहरा संवेदना व्यक्त किया है। ये जानकारी कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय के मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौड़ेल द्वारा जारी शोक विज्ञप्ति में उल्लिखित है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि गुप्तचर आधारित दो अभियानों में 12 आतंकी मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने कहा है कि सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में अभियान चलाया। बलूचिस्तान के केच जिले में अभियान के दौरान हुई घमासान मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तर बिजीरिस्तान जिले में चलाए जा रहे अभियान में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया। 8 आतंकी मारे गए और 6 घायल हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में विस्फोट में 2 बच्चों की मौत। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मीर अली शहर पाकिस्तानी तालिबान के पुराने गढ़ में गुरुवार को शक्तिशाली विस्फोट से एक घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और 2 बच्चों की जान चली गई। विस्फोट में अन्य कुछ लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस विस्फोट के कारणों और बम बनाने के लिए और विस्फोटक की तलाश की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जलवायु परिवर्तन संबंधी सम्मेलन COP29 में सहभागी होकर राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल बांकू से स्वदेश के लिए प्रस्थान। नारायणगढ़ बुटवल सड़क खंड का निर्माण काम आगामी मार्गशीर्ष के भीतर अगर शुरू नहीं किया गया तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जताई प्रतिबद्धता। नागढ़ुंगा सड़क आज से मार्गशीर्ष 5 गते तक दोपहर 3 घंटे आंशिक रूप से की जाएगी बंद। और पाकिस्तानी सेना की बड़ी कार्रवाई 12 आतंकियों को मार गिराया। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।